ओम शांति। इस सीएडी प्रोजेक्ट के अंदर हमें विशेष तीन बातों की तरफ ध्यान देना होता है। जैसा कि आपके सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए राजयोग लाइफस्टाइल, जो कि हमारी मानसिक शुद्धता बनाए रखने में मददगार है, और शरीर के लिए लो फैट हाई फाइबर डाइट, और तीसरा पॉइंट है मॉडरेट एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग। इस सत्र के अंदर हम मॉडरेट एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज के बारे में एक सत्य कहानी सुनाती हूं कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 18th सेंचुरी के एंड की ही बात है, इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति थे थॉमस पार्की। वो 152 वर्ष की आयु में भी अपने खेत में कार्य करते थे, क्योंकि वो पेशे से किसान थे। उनको ऐसे इतनी उम्र में खेत में कार्य करते देखते हुए एक रईस अंग्रेज ने उसको देख लिया और उन्हें एक अचरज की चीज समझकर वो अपने साथ अपने घर ले आए, अपने रईस मित्रों को दिखाने के लिए। और वहां उनको खूब अच्छा अच्छा भोजन खिलाया गया। आजकल हम जानते हैं अच्छा भोजन क्या होता है, शराब मीस इत्यादि, और उनको होटलों में घुमाता रहा, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उनको इनडाइजेशन हो गया, अपच हो गया, और कुछ ही महीनों में वो इस दुनिया से चल बसे। 152 वर्ष 9 महीने। तो अभी आप समझ सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का उस किसान के जीवन में अभाव हो गया था। और खाना खाएं हम अच्छा, लेकिन उसका प्रॉपर कंजम्पशन होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, नहीं तो टॉक्सिन अंदर में भरते जाते हैं। और एक सर्वे ही इंग्लैंड में किया गया हार्ट के पेशेंट के ऊपर, और उस 10 व्यक्तियों का सर्वे किया गया एडल्ट का, उन्होंने पाया उनमें से 9-7 के जो हार्ट अटैक थे उसका कारण था फिजिकल एक्टिविटी की कमी। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भोजन के साथ साथ, विचारों के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का होना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को निरोगी रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो यही वजह है कि आज बीमारियां बढ़ती जा रही है। और हार्ट के पेशेंट को कोई ज्यादा विग्रेस एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ मॉडरेट एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग ही सफिशियंट है, जो कि आप प्रैक्टिकल में कर भी रहे हैं और जो हर कोई कर सकता है, यंग, जवान, बूढ़ा, महिला कर सकते हैं या नहीं। तो अभी हम उसी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, और इससे पहले इस फिजिकल एक्टिविटी की हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है, उसमें हम पांच विशेष बातों की तरफ ध्यान देंगे। एक तो फिजिकल एक्टिविटी की हमारे को हेल्दी हार्ट रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, दूसरा कैसे जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग ब्रिस्क वॉकिंग, ये हमारे हार्ट के ऊपर प्रभाव डालती है, तीसरा हमें कितनी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, कितना, जिससे कि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रह सके, और चौथा पॉइंट है कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, पांचवा पॉइंट है कितने सुरक्षित तरीके से हम ब्रिस्क वॉकिंग करें या फिजिकल एक्टिविटी करें कि हम बिना किसी हानि के जो हमने एक टारगेट रखा है हेल्दी हार्ट के लिए वो हम प्राप्त कर सके। तो इम्पोर्टेंस, इफेक्ट, एम और कौन सी प्रकार विथ शॉर्ट ऑफ एक्टिविटी और हाउ सेफली, कितने सुरक्षित तरीके से हम फिजिकल एक्टिविटी करें। तो जैसे कि यहां स्लाइड के अंदर भी दिखाया गया है, तो खड़ा होना पड़ेगा मुझे थोड़ा, कि ये है एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग। एरोबिक क्यों कहते हैं, ये बहुत वर्षों पहले डॉक्टर केनेथ ने एरोबिक शब्द का इस्तेमाल किया था, और एरोबिक मतलब खुले हवा के अंदर जाकर वॉकिंग करना, जहां प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, और जब भी पेशेंट आते हैं तो पहले उनके टीएमटी टेस्ट इत्यादि करवाकर उनको आना होता है, और पेशेंट आर इंडिविजुअली प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज लेवल, टिपिकली ब्रिस्क वॉकिंग अकॉर्डिंग टू देयर बेस लाइन टीएमटी रिजल्ट। जो भी आपका टीएमटी ने रिजल्ट शो किया है उसी आधार पर हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग ब्रिस्क वॉकिंग प्रिस्क्राइब की जाती है, बताई जाती है। नेक्स्ट कर लें, ये यहां का थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और वहां एरोबिक, अनैरोबिक क्यों नहीं, अनैरोबिक जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वो है अनैरोबिक, क्योंकि अनैरोबिक के अंदर ऑक्सीडेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं होता। ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है, हम जो कुछ भी खाते हैं उसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन और हीट की जरूरत होती है, और एरोबिक में जहां पर काफी मात्रा में ऑक्सीजन होती है वहां जाकर हम जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वहां हमारा ऑक्सीडेशन जो है वो प्रॉपर होता है। तो इसलिए अनैरोबिक ना होके कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है? एरोबिक एक्सरसाइज। और यूएसए की साइंटिस्ट एड मैककेवे ने एंटार्क्टिका में जाकर आइस कोर ड्रिलिंग किया और वहां उन्होंने पाया कि प्राचीन समय में वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो थी वो 38 से लेकर 50% तक थी और उसके कंपैरिजन में आज के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20.9। ये तो गांव के अंदर, सिटीज में इससे भी कम है। ये सर्वे होते रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत इस प्लैनेट के ऊपर है पेड़ पौधे, और आज वो कटते जा रहे हैं, कल कारखाने हम बनाते जा रहे हैं, दूसरी विषैली गैसेस बढ़ती जा रही हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती। और साइंटिस्ट रॉबिन एंड कार्टिन ने यह बताया, लैक ऑफ सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी एंड इज आल्सो द अल्टीमेट मैकेनिज्म ऑफ डैमेज। क्योंकि हमारा जितने भी अंग है, हर अंग कुछ सेल का समूह है। अगर हमारे सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो सेल जो है वो क्या हो गए? इंजर हो गए। और जिसका इफेक्ट हम जो ऑर्गेन से, अंगों से जो कार्य करते हैं उनका मैकेनिज्म डैमेज होगा। क्लियर हुआ? और सेल तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे इसके लिए बहुत जरूरी है डीप ब्रीदिंग, ताकि ऑक्सीजन जो है हमारे सेल तक जाए। और खुले में जाकर वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, ना कि हम बंद कमरे करके बैठे, जैसे कि आजकल जिम इत्यादि में लोग जाते हैं, एक ही कमरे में कितने इकट्ठे होकर हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। और सब एज के लोग वहां पर आते, बुजुर्ग भी आते, यंग भी आते, और बुजुर्ग यंग के कंपटीशन के अंदर आकर एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, जिससे कि हानि भी हो सकती है। इसलिए आप सभी को भी क्या बताया जाता है कि कहां हमें एक्टिविटी करनी है? खुले गार्डन में जाकर, जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन हमको अवेलेबल होती है। और इसकी बजाय जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां सड़क पर हम वॉकिंग करते हैं, तो वहां हमें पॉल्यूटेड एयर मिलेगी या फ्रेश एयर मिलेगी? पॉल्यूटेड एयर मिलती है, तो हम उसको अवॉइड करें और खुले में जाकर वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाय ब्रीदिंग, ईटिंग एंड लिविंग वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग अननेचुरली नॉन फूड सब्सटेंसेस इनटू आवर बॉडी। हम भोजन के जरिए, सांस के जरिए, और जो हमारा रहने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, उसके जरिए हम अपनी बॉडी के अंदर अननेचुरल और नॉन फूड स्टफ, अप्राकृतिक और ऐसे जो ना खाने वाले पदार्थ है वो भी अपनी बॉडी के अंदर आज डाल रहे हैं। बाय ब्रीदिंग कैसे? क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हम अपने घर को तो अंदर से क्लीन करते हैं, घर के बाहर चाहे कितना भी कचरा पड़ा रहे, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारे घर के अंदर आ रही है वो कहां से आ रही है? बाहर से होकर आ रही है। तो हमें पोल्यूटेड एयर मिल रही है या कैसी एयर मिल रही है, सोचिए। और जो हमारी खाने की आदतें हैं आज, गुस्सा में भर के या डिसलाइकिंग रहती है भोजन, कुकिंग, ये प्रॉपर नहीं है, जिसके बारे में चर्चा हम डाइट के बारे में जब सत्र होगा उसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट करें, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा होता चला जाता है। कैसे, देखिए, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग, फ्लेवरिंग, हाइड्रोजनेटेड ऑयल एंड आर्टिफिशियल केमिकल, स्मॉक एटसेट्रा एटसेट्रा, डे इन एंड डे आउट, फिलिंग अप ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनसाइड आवर सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। प्रिजर्वेटिव, आज हम मार्केट की चीज खाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स रहता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो, लेकिन उसके अंदर फिर विटामिन इत्यादि की कमी हो जाती है। और कलरिंग, जो आज उनको, जैसे हम शरबत लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, सब में कलर मिक्स होता है और कलर हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, कैंसर आदि बीमारियां भी उससे होती है। दूसरा, फ्लेवरिंग, आज हम नेचुरल चीजें नहीं डालते, इलायची इत्यादि, खुशबू के लिए आर्टिफिशियल एसेंस मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से, और हाइड्रोजनेटेड ऑयल मतलब डालडा घी इत्यादि, इससे जो भी हम डिश प्रिपेयर की जाती है बेकरी जहां पर बनते हैं ये बिस्किट्स या ब्रेड या कोई भी दूसरी फ्राइड चीज, पिज्जा इत्यादि, तो वो लंबे समय तक थोड़ा सा ऑक्सीडाइज नहीं होते जब हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज करते हैं, लेकिन उससे ट्रांसफैटी एसिड जो है बनते जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और आर्टिफिशियल केमिकल्स, आज जो जैसे एसेंस भी डालते, लेकिन जिस चीज के लिए हम कहते हैं भाई गुलाब जल भी है, तो उसमें भी आर्टिफिशियल चीज हम यूज करते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर, बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट, विषैले पदार्थ जो है इकट्ठे होते जाते हैं हमारे फ्लूइड के अंदर भी, जो अंदर में पानी है उसके अंदर भी, और इससे फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस। जो पानी स्वच्छ होना चाहिए उसके अंदर ये बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि बढ़ते जाते हैं। वैसे तो ये बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट इत्यादि जो है हमारे लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन से विटामिन्स बनाने में ये मदद करते हैं, लेकिन अगर इनकी तादाद बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। है दास, क्योंकि हमारे लिए क्या बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, लेकिन अगर तादाद बढ़ जाए तो दास भी क्या हो जाते हैं, नौकर भी क्या हो जाते हैं, हानिकारक बन जाते हैं। तो इससे प्री मैच्योर एजिंग, जल्दी बुढ़ापा आता है, और सफरिंग एंड अर्ली डेथ, बीमारियां ज्यादा आती है और जिससे अर्ली डेथ, अकाल मृत्यु इत्यादि होती है, बीमारियां की वजह से भी होती है। और ओनली मेथड बाय विच डिजीज काजिंग टॉक्सिक वेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लीव अवर बॉडी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी कि उनको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है, ये कम हो, इसके लिए जरूरी है कि उन जो भी हम भोजन कर रहे हैं प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर में जाना जरूरी है, और जहां ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होते हैं वहां ये बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि पैदा नहीं हो सकते। और विदाउट एनफ ऑक्सीजन द बॉडी सिंपली कैनॉट टेक आउट द इनर गार्बेज। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो अंदर में गार्बेज इकट्ठा हो गया है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करो, हाँ बस, नहीं नहीं वो पिछला करो ना, इससे नेक्स्ट, क्योंकि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर में नहीं होगा तो ये जो गार्बेज है इट स्टे विद इन अस, वो हमारे अंदर में ही रहता है, जिससे ऑर्गेन्स एंड फंक्शन ब्रेक्स डाउन। जब ऑर्गेन्स के अंदर ही पावर नहीं है तो कार्य भी नहीं हो पाएगा, और इससे क्या होता है, आवर बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड बिकम डर्टी एंड टॉक्सिक। जब तक ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये गंदगी फ्लूट तक है, तब तक तो फिर भी हम थोड़ा अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं, लेकिन जब ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 45 केजी पानी है, बताया ना, ए ह्यूमन बॉडी इज 2/3 ओवर 45 केजी ऑफ वाटर, एंड दिस वाटर इज फिल्दी एंड एवरी सेल फ्लोट्स इन इट। और जो भी हमारे सेल है बॉडी के, वो इस गंदे पानी में तैरते रहते हैं। और रीजन व्हाई वी गेट सिक एंड टायर एंड सिक एंड टायर ऑफ बीइंग सिक एंड टायर, यही वजह है कि हम अच्छा भोजन भी खाते रहते हैं, आराम भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी थके थके महसूस करते हैं अपने आप को, हमें फीलिंग ऑफ वेल बीइंग की फीलिंग नहीं आती है। और साथ साथ हमेशा हमें लगता है कि जैसे कि हम बीमार हैं, हम चेकअप भी करा के आते और अपने आप को बीमार महसूस करते रहते हैं। कारण क्या है कि अंदर में टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से फंगस, बैक्टीरिया, वायरस बढ़ते जाते हैं। और कोल्ड जर्म्स एंड वायरस ड्रॉ एक्स्ट्रा पावर फ्रॉम टॉक्सिन और कंटामिनेंट्स फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम्स एंड फीड द ओल्ड बॉडी इंजरीज एंड सिस्टम कंजेशन। और ये जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है, इनको जो हमारी बॉडी के अंदर गंदगी होती है उससे भोजन मिलता रहता है, और भोजन मिलता रहता है, उनकी तादाद बढ़ती जाती है। यही वजह है कि बीमारी जो है वो क्रोनिक डिजीज हो जाती है। क्या कहते हैं, ये बीमारी तो पुरानी बीमारी हो गई है, और फिर वो जल्दी से ठीक भी नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, बीपी हो गया है, डायबिटीज हो गया, क्यों क्रोनिक इनको कहते हैं, क्यों कहते हैं अब पूरा समय हमें दवाई ही खाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टेबलेट्स इसका साधन नहीं है, सिर्फ डाइट से ये कंट्रोल नहीं हो सकती। टेबलेट्स भी चाहिए, डाइट भी प्रॉपर चाहिए, विचारों की भी शुद्धता चाहिए, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी कभी भी एक कारण से नहीं है, उसके पीछे 2-3 कारण इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बीपी है, डायबिटीज है, डिप्रेशन है, ये फ्री डिजीज नहीं है, एसिडिटी है, ओबेसिटी है, ये फ्री डिजीज नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती। हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें तो ये डिजीज अपने आप ठीक हो सकती है। हम कार की सर्विस भी कराते हैं तो उसको भी लंबा जब तक नहीं चलाते हमें नहीं पता चलता है इसकी सर्विस हुई है या नहीं, और हम भोजन खा के अपनी प्लेट भी बाहर उठा के रखना नहीं चाहते। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एनएरोबिक वातावरण में ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अब जैसे कि हम राजयोग लाइफस्टाइल ले रहे हैं, तो चाहे डाइट हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, हम सब के अंदर राजयोग लाइफस्टाइल का, विचारों का जरूर प्रयोग करते हैं, जैसे आपको सिखाया भी जाता है जब आप वॉकिंग करते हैं तो। क्योंकि देखिए, जब हम अपने आप को भूल गए कि मैं आत्मा हूं, अपने पिता से दूर हो गए, परमात्मा से, और जब हमारी जो पावर थी, आत्मिक गुण थे, वो कम हो गए, तो उसकी वजह से हमारे मन और बुद्धि दोनों पोल्यूटेड हो गए ना। मन के अंदर विचार, भावनाएं, स्मृति सब कैसी हो गई, शुद्ध रही या अशुद्ध? और बुद्धि में आत्मिक ज्ञान तो रहा ही नहीं, सिर्फ जीव को चलाने की बुद्धि रही। तो जैसे जब हम अपने आप से दूर हो गए तो हमारे मन बुद्धि का विनाश होता चला गया, पावर उसके अंदर नहीं रही। इसी तरह से अगर शरीर के जो, जिससे ये शरीर बना है, 70,000 बिलियन सेल्स, उनको अगर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फैट, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि नहीं मिलेंगे, तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है? और ये शरीर जो कि कई ऑर्गन का समूह है, क्या उनका मैकेनिज्म ठीक रह सकता है ऑर्गन का? सोचे हम तो, जैसे सूर्य की रोशनी से विटामिन्स भी मिलते, प्रकाश भी मिलता है और कीटाणुओं का नाश भी होता है, होता है ना। लेकिन उसके अभाव में जब हमने लाइट जो हम रात में इस्तेमाल करते हैं, तो आप सोचें क्या उससे हमें कोई विटामिन्स मिलते हैं? नहीं मिलते ना। उससे कीटाणु नाश होते हैं और ये कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। और क्या होता? प्रकाश, क्या प्रकाश दूर हो जाता? एक ही कमरे में हम कितने बल्ब इत्यादि लगाकर रखते हैं, फिर भी उस कमरे में भी कोने में अंधेरा रहता है, रहता है या नहीं? तो और उस इसी तरह से जब आत्मिक पावर भी कम हुई तो हमने क्या किया? कितनी भक्ति, पूजा, जप, तप, शास्त्र इत्यादि किया, लेकिन क्या हमारी पावर बढ़ी? और ये जो अंदर में वाइसेस थी, जो आध्यात्मिक पावर कम हो गई थी, उसके अभाव में जो विकार थे वो बढ़ते चले गए और आत्मा के जो सूक्ष्म ऑर्गेन्स हैं उनको कार्य करना आत्मा के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इसी तरह से शरीर को भी प्रॉपर भोजन चाहिए और साथ साथ ये जैसे योग है रूहानी ड्रिल, तो ये एक्सरसाइज क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। ये है शारीरिक ड्रिल जो कि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। ठीक है, नेक्स्ट करें। और क्योंकि हाइड्रोजन इन एनारोबिक, जब एनारोबिक वातावरण होता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यूज हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल है, क्लीन है। और जब हम भोजन करते हैं पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो फैट, प्रोटीन इत्यादि है वो उन टिश्यूज के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं वो क्या होते जाते हैं? सोलिडिफिकेशन, जमने, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम होती चली जाती है, और इंटीग्रेटेड, इस तरह से वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और कंसंट्रेटेड, जुटते जुटते गहन गहरे बनते जाते हैं, जिससे एनर्जी फॉर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती और गेट्स डेंसर एंड डेंसर, और जिससे क्या होता है? एक्सट्रीम हार्डनेस सेट इन, जो हमारे सेल हैं उसके ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम, ज्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हार्ड हो जाते हैं, और जिससे क्या होगा? मेक सेल हार्ड एंड ब्रिटल, सेल हार्ड हो जाते हैं और वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, बिल्ड सेल्स, और नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं जो कि सेल नहीं है, एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है, बिल्ड स्ट्रक्चर, एक नई स्ट्रक्चर बना लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, जैसे एक दो एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर एक समय था जब भारतवासी ही रहते थे, धीरे धीरे मुस्लिम आए, सब आपस में मिलकर रहे, अंग्रेज आए आपस में मिलकर रहे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अलग अलग स्ट्रक्चर बनती चली गई, जिससे क्या हुआ? देश की यूनिटी को खतरा होना शुरू हो गया। तो अब जब देश की यूनिटी को खतरा होना शुरू हुआ, तो जो ओरिजिनल निवासी थे उन्होंने क्या सोचा? भाई देश की यूनिटी क्यों खत्म हो रही है? तो जो आउटर, जो बाहर से लोग आए, उनको हमें बाहर निकालना चाहिए। अब हुआ ना, जैसे अमेरिका के अंदर भी हुआ, जो वो टावर का गिरना, तो जिसके ऊपर शक गया तो क्या कहते? भाई इन लोगों को बाहर निकालो, ऐसा ही करते हैं ना, या ये समझे। और जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे उनको, तब तक आपस में यूनिटी नहीं आती। और एक बहुत ही लाइव एग्जांपल हम अपने आप से देखें, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी कितनी खातिर करते हैं ना, और दो तीन दिन तो करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेहमान तो जा ही नहीं रहा है, तो अब क्या करो, हम आपस में एक दूसरे से बोलना बंद, मेहमान को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेहमान की जो पहले आओ भगत थी वो कम हो जाती है। जो हम पहले डिशेज बनाते थे अब नहीं बनाएंगे तो कम होगा, और क्या होगा, आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है, आप दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, अब ये वाइब्रेशन मेहमान तक भी जाना शुरू हो जाते हैं, होंगे या नहीं। और इस तरह से हम उस मेहमान को अपने घर से वापस, और आगे के लिए हम सचेत हो जाएंगे, हम कोई भी आएगा तो उसकी ज्यादा खातरी, हाँ एक दिन रुकेंगे तो करेंगे, क्योंकि हमारा नहीं तो बजट खराब होता है ना ऐसा। इसी तरह से भी जो ये फैट है, साल्ट है, शुगर है, ये फॉरेन पार्ट है, ये हमारी बॉडी में अपना घर बना लेते हैं। और कोई भी फॉरेन चीज जब हमारे घर के अंदर आकर रहना शुरू करे तो हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के फंक्शन को कैसा होगा, कार्य करेगा नहीं करता ना। इसलिए क्या करना चाहिए, अब जब हमें नॉलेज मिल रही है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर में जो बीमारियां हैं उसका कारण हमारा गलत खानपान, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है। तो हम चाहे तो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर समझ लेकर उसको हम दूर करें, ठीक है। तो इस तरह से जो एनारोबिक से ये नुकसान हमें होता है, हमारे सेल जो है डैमेज हो जाते हैं और अपनी अलग स्ट्रक्चर उनकी बन जाती है। जो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें भी देखो आप सरफ इकट्ठा होकर कितना हार्ड हो जाता है कि आप चाकू से भी उसको रगड़ के उतारना चाहे तो वो नहीं उतरता। उसके लिए फिर अलग से सॉल्यूशन आते हैं, फिर आपका खर्चा कितना बढ़ता है, बीमारी आती तो खर्चा भी बढ़ता है ना। तो इसलिए क्या चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन का वातावरण होना बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर में टिश्यूज जो हैं वो डिसोल्विंग होना शुरू हो जाएंगे। जब हम वॉकिंग करेंगे ना तो जो अंदर से सॉलिड है वो डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा, और डिसइंटीग्रेटेड उनमें आपस में जो जुड़ाव था वो खत्म होना शुरू होगा, और डिकंसेंट्रेटेड उनकी गहनता भी कम हो जाएगी, वो वीक होते जाएंगे, और सॉलिड फॉर्म एनर्जी फॉर्म वो क्या है, फ्लूइड स्टेट में आ जाएगी, जिससे कीप सेल क्लीन, हमारे सेल क्लीन हो जाएंगे, कीप सेल फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे फिर से, और इरेज द क्रिएटेड फॉर्म, जो अननेसेसरी एक फॉर्म क्रिएट हो गई थी वो फिनिश हो जाएगी, और रिमूव अननीडेड स्ट्रक्चर, जो सेल नहीं है लेकिन सेल बन गए हैं वो स्ट्रक्चर अपने आप फिनिश हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है या नहीं, और जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जब हम क्रोध में, गुस्से में, या स्ट्रेस के अंदर, या चिंता में, या कोई दुख की फीलिंग के अंदर भी वॉकिंग करते हैं ना, तब हम चाहे ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी होते हैं लेकिन हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसके भी ऊपर भी स्टडी होती है कि कहते जब हम क्रोध में होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक ने एक स्टडी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, जापान की है ये, तो उन्होंने कहा जब क्रोध आता है तो उस समय हम अपने सांस को रोक लें, ताकि क्रोध का इफेक्ट जो है हमारे अंदर में ना जाए, क्योंकि उससे हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। और हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ भी रहे हैं, सुबह भी बताया ना डॉक्टर गुप्ता ने, कैसे सुख शांति के वाइब्रेशन जब हम चिंतन करते हैं तो उससे कैसे हमारी एंडोथेलियन जो वॉल है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये चीजें समझे हम, कभी भी हम चिंता दुख अशांति में नहीं, वॉकिंग करते वक्त हमेशा सोल कॉन्शियस होकर वॉकिंग करें, उस समय दूसरी चीजों को अपने अंदर से निकाल दें। नेक्स्ट करें, ताकि आप प्रॉपर ऑक्सीजन अपने अंदर में लेकर जा सकेंगे। अब है रोल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज इन मैनेजमेंट ऑफ सीएडी। जो सीडेंट्री पीपल होते हैं उनको सीएडी होने के 3 times ज्यादा चांस होता है। सीडेंट्री लोग जानते हैं ना, जो टेबल वर्क करते हैं, जो मेंटल वर्क करते हैं, जो जिनके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी का अभाव होता है, उन्हीं को ये बीमारी ज्यादा होती है। और बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो सीएडी के रिग्रेशन के लिए वो है वॉकिंग ऑन लेवल आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। और इसके द्वारा हमें क्या करना है, 2000 से ज्यादा कैलोरी जो है पर वीक एक्सरसाइज के जरिए स्पेंड करनी है, यूज करनी है, जो अंदर में एक्स्ट्रा जमा है। और नेवर वॉक आफ्टर मील, कभी भी भोजन के पश्चात एक्सरसाइज वॉकिंग नहीं करें। इसके ऊपर भी बड़े सर्वे हुए हैं कि भोजन के पश्चात एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी चाहिए। एक सर्वे किया गया, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, और उन्होंने ये सर्वे डॉग के ऊपर किया। जैसे भोजन कराया गया कुत्ते को, एक को तो आराम कराया गया और एक को दौड़ाया गया। तो जिसको आराम कराया गया था वो तो उसका भोजन भी प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ, लेकिन जिसको एकदम भोजन के पश्चात दौड़ाया गया था उसकी डेथ हो गई। क्यों ऐसा होता? क्योंकि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, और जब हम भोजन भी खाते हैं तो भोजन के डाइजेशन के लिए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। और जब हमने भोजन किया तो जो भी ब्लड है वो हमारे जठर के आसपास आकर इकट्ठा हो जाता है, और जब हम वॉकिंग करते हैं तो जब वो वॉकिंग किया तो वो तो भोजन अनडाइजेस्टेड ही पड़ा रहा, और वॉकिंग के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट डिमांड है, वो उसके अंदर खर्च होता है। तो इसलिए भी कभी भी हमें भोजन के पश्चात वॉकिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट करें, क्योंकि प्रॉपर भोजन, वैसे भी सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, यहां तक कि मेंटल वर्क भी नहीं करना चाहिए कम से कम 1 घंटा। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे ऑफिस वगैरह है, चाहे स्कूल है, वहां पर 1 घंटे का ब्रेक आपको मिलता है। मिलता है या नहीं कि हम भोजन करें और थोड़ी सी देर रिलैक्स हो। स्कूल के अंदर भी ऐसे होता है, भले पढ़ाई के बीच में ब्रेक हुआ लेकिन वहां भी हमें 1 घंटे का ब्रेक किया, हमने पहले भोजन किया स्टडी के पश्चात, फिर हमें थोड़ा रिलैक्स किया, फिर उसके बाद हम स्टडी, चाहे कोई भी एक्टिविटी करते हैं। तो अब आते हैं कि एक्सरसाइज जो है हमें कितना और कैसे करें, कि स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड कैलोरी स्पेंड। अगर हम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो कैलोरी स्पेंड होती है पर मिनट 3, और अगर हम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो कितनी कैलोरी स्पेंड होगी, 4 कैलोरी। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 5 कैलोरी पर मिनट स्पेंड होती है। इस तरह से एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया जा रहा है कि सुबह और शाम दोनों मॉर्निंग आवर में है जब हम वॉकिंग करते हैं, तो मॉर्निंग में अगर 45 मिनट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो कैलोरी स्पेंड होता है 225, और इवनिंग में जब हम 30 मिनट्स 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो हमारा कैलोरी स्पेंड होता है 90। और इस तरह, क्योंकि 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती है। इस तरह से सुबह और शाम की मॉर्निंग वॉक से जो हमारा फैट लॉस होगा वो कितना होगा, 35 ग्राम्स पर डे के हिसाब से। और एक महीने में जो फैट का लॉस होगा वो होगा 1 kg। नेक्स्ट करें। और फिजिकल एक्टिविटी के समय साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आती है। प्रॉपर एक्सरसाइज लीड टू कैसे, इससे कंडीशनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की कंडीशनिंग हो जाती है। आप देखते हैं ना, हमें आदत नहीं होती है चलने की क्योंकि हम डरे हुए हैं, लेकिन जब हम वॉकिंग करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हार्ट कंडीशन होना शुरू हो जाता है। एंड बेटर कंट्रोल ऑफ हाई बीपी एंड डायबिटीज। बीपी और डायबिटीज पहले भी बताया, ये फ्री बीमारी नहीं है, अंदर में टॉक्सिक वेस्ट की वजह से ये बीमारियां होती है। नमक ज्यादा खाते हैं, बीपी क्यों होता है? आप स्ट्रॉन्ग मेंटल एफर्ट्स करते हैं, एंग्जाइटी आप में बनी रहती है, आप ज्यादा साल्ट खाते हैं, ऐसे ही डायबिटीज भी क्यों होती है? शुगर है, तनाव है, फ्राइड आइटम ज्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए जब हम वॉकिंग करते हैं जो टॉक्सिक वेस्ट अंदर में इकट्ठा है उससे बीपी और डायबिटीज भी हमारी कंट्रोल में आना शुरू होती है। जो भाई बहन डायबिटिक हैं, बीपी हैं, वो जरा ध्यान से देखें इसकी इम्पोर्टेंस। और इससे ओबेसिटी में भी कमी होती है और बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड दोनों वो भी कम होते चले जाते हैं। ओबेसिटी मोटापा और इम्प्रूवमेंट इन गुड कोलेस्ट्रॉल, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ना शुरू हो जाता है। और फीलिंग ऑफ फिटनेस एंड वेलबींग, और हमें फिट भी स्वस्थ महसूस होता है और अंदर में खुशी बनना शुरू हो जाती है, महसूस होती है, और इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, टेंशन भी कम होती जाती है। जो स्ट्रेस और टेंशन कारण है ना, स्ट्रेस भी वॉकिंग से कम होता है। अगर कभी आपको स्ट्रेस हो ना, स्ट्रेस में वैसे इंसान का दिल नहीं करता मैं जाकर वॉकिंग करूं, फिर आलस्य उसे ले खींचता है, अलबेलापन, वो कहेगा मेरे में शक्ति नहीं है, मुझे यहां दर्द होता है, मुझे यहां दर्द, मन मेरा नहीं करता। नहीं, मन को समझाना है, इसीलिए आपको नॉलेज दी जाती है। जब भी स्ट्रेस भी हो तो वॉकिंग करेंगे तो अपने आप स्ट्रेस रिलीज होंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन हार्मोन्स जो है वो रिलीज होना शुरू होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन और डिया, ये भी रिलैक्सेशन हार्मोन्स है। डिया भी, डिया हाइड्रो एपी एंड्रो स्टीरोन इसको बोलते हैं, स्टीरोन। और इससे ओपनिंग ऑफ कोलेट्रल अराउंड कॉरनरी ब्लॉकेज, अपने आप जो है कोलेट्रल बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मेन रास्ता ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से तो क्या होता है, सिटीज के अंदर छोटी छोटी गलियों से हम आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे कि समझा भी रहे हैं आपको डॉक्टर गुप्ता कि ये कोलेस्ट्रॉल भी बंद हो जाते हैं अगर ज्यादा हम स्ट्रेस इत्यादि करते हैं तो। अदरवाइज नेचर अपने आप बाईपास करती है थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से ही। नेक्स्ट करें। साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड एक्सरसाइज। फ्यू वेल परफॉर्म स्टडीज प्रूव विद रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होता है, और इससे टाइप ए बिहेवियर इज मॉडिफाइड टू टाइप बी बिहेवियर। सभी जानते हैं ना टाइप ए बिहेवियर, परफेक्शनिस्ट बाय नेचर, वर्क प्रेशर, पॉलीफेजिक बाय नेचर, टाइम प्रेशर, वो अपने आप मॉडिफाई होकर टाइप बी बिहेवियर। क्योंकि आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है ना वॉक करने की, और इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ एफिकेसी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो क्या होता है, बीमारी की वजह से हैंडीकैप्ड लाइफ है। क्यों? क्योंकि मेडिकल रिस्ट्रिक्शन है, फियर साइकोसिस है। आप कहीं भी जाते हैं अपने साथ एक बड़ा सा अपनी मेडिसिन जरूर लेकर जाना पड़ता है, और जब आप कहीं अकेले यात्रा पर जाते हैं